السلام علیکم. یہ پارٹ 13 ہے ناول ڈیول مائنڈ. یہ ناول نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. آواز کمل خلیل, پیشکش محمد اظہر, مصنف ظہیر احمد. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 13. جیسے انہیں پہلے سے ہی معلوم تھا کہ بلیک ایجنسی کا ہیڈ کوارٹر اسی صحرا میں ہے, کاف فلے نے پریشانی کے عالم میں کہا. اسکرین پر نظر آنے والا ہیلی کاپٹر کافی بلندی پر تھا جو انہیں ایک دھبے کی شکل میں نظر آ رہا تھا. دور ہونے کی وجہ سے انہیں ہیلی کاپٹر میں موجود افراد دکھائی نہیں دے رہے تھے. اس ہیلی کاپٹر کا کلوز لو میں ایک نظر ان پاکستانی ایجنٹوں کو دیکھنا چاہتی ہوں, کرسٹائن نے کہا. نہیں, میں ہیلی کاپٹر کا کلوز نہیں لے سکتا. میں اس وقت انہیں لنکنگ مشین سے چیک کر رہا ہوں. اس مشین سے یہ ہیلی کاپٹر ہمیں اسی طرح دور سے ہی دکھائی دے سکتا ہے, کاک فلے نے جواب دیا. یہ لوگ ہیڈ کوارٹر سے ابھی کتنی دوری پر ہیں؟ کرسٹائن نے پوچھا. ہیڈ کوارٹر سے تو یہ ابھی بہت دور ہیں, لیکن ان کا اس ڈیزرٹ میں آنا میری سمجھ سے بالا تر ہے. اگر یہ اسی رفتار سے سفر کرتے رہے تو پھر یہ سب اگلے 3 گھنٹوں میں ہیڈ کوارٹر کے اوپر ہوں گے, کاک فلے نے کہا. تو اب تم کیا کرو گے؟ کرسٹائن نے پوچھا. میں انہیں اس سے زیادہ آگے آنے کا موقع نہیں دے سکتا, اس لیے اب ان کا خاتمہ کر دینا چاہتا ہوں, کاک فلے نے کہا. اس کی انگلیاں بستور کی پیڈ پر چل رہی تھی. ہاں, یہی بہتر رہے گا. اگر یہ یہاں تک پہنچ سکتے ہیں تو اس سے آگے بھی آ سکتے ہیں, اس لیے انہیں ہیلی کاپٹر سمیت ختم کر دو, کرسٹائن نے کہا. بس صرف 1 منٹ کی بات ہے, کاک پلے نے کہا. اس نے جلدی جلدی ٹائپنگ مکمل کی اور پھر اس نے انٹر پریس کر دیا. انٹر پریس کر کے اس نے کی بورڈ سے ہاتھ ہٹا لیے. اسی لمحے اسکرین کے اوپر والے حصے میں ایک ٹائمر آن ہو گیا جس پر 30 سیکنڈ کا وقت لگا ہوا تھا. ان کی موت کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے, کاک پلے نے کہا. تو کرسٹائن نے اس بات میں سر ہلا دیا. اس کی نظریں ٹائمر پر جمی ہوئی تھی جس کے سیکنڈ کم ہو رہے تھے, اور پھر جیسے ہی ٹائمر پر سیکنڈ 0 ہوئے اسی لمحے انہوں نے ہیلی کاپٹر کے پرچے اڑتے دیکھے. ہوا میں اڑتا ہوا ہیلی کاپٹر شولے اڑاتا ہوا یکلک پھٹ کر تباہ ہو گیا تھا. ہرا ہرا میں نے ہیلی کاپٹر کو سیٹلائٹ سسٹم سے تباہ کر دیا ہے. بلندی پر موجود عمران اس کے ساتھیوں کو میں نے بچ نکلنے کا کوئی موقع نہیں دیا. ہیلی کاپٹر کے ساتھ ان کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں. میں نے عمران اور اس کی ساری ٹیم کو ختم کر دیا ہے. ہرا ہرا پاکستان سیکرٹ سروس کی ساری ٹیم ختم ہو گئی ہے, کاک فلے نے زوردار انداز میں نعرے مارتے ہوئے کہا. ہیلی کاپٹر کو تباہ ہوتے دیکھ کر اس کا چہرہ پرتے مسرت سے کھلا جا رہا تھا, اور اس کا جسم خوشی سے یوں لرز رہا تھا جیسے وہ ابھی اٹھ کر دیوانے وار رقص کرنا شروع کر دے گا. اس نے لنکنگ کمپیوٹرائزڈ مشین سے ہارگن کا ہیلی کاپٹر ٹریس کیا تھا, اور پھر اس ہیلی کاپٹر کے ساتھ لنک کر کے اس میں موجود تمام ایمونیشن کو آپریٹ کر کے بلاسٹنگ پوائنٹ پر سیٹ کر دیا تھا. ہیلی کاپٹر پر لگے ہوئے میزائل اس کے آپریٹنگ سسٹم سے چارج ہو گئے تھے جنہیں کاک پلے نے کاؤنٹ ڈاؤن ڈسپلے دے کر بلاسٹ کر دیا تھا, اور یہ سب کچھ انتہائی جدید سسٹم سے ہوا تھا جس کے بارے میں عمران بھی نہیں جان سکتا تھا. اس کے ہیلی کاپٹر کا ایمونیشن خود ان کی ہلاک کا موجب بن سکتا ہے. کاک پلے واقعی ڈیول مائنڈ تھا. اس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کرنے کے لیے سیٹلائٹ سسٹم کو استعمال کیا تھا کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو چوکنے ہونے کا بھی موقع نہ مل سکتا تھا, اور چونکہ اس سسٹم کے تحت ہیلی کاپٹر میں لگے تمام میزائل پھٹ گئے تھے جس سے ہیلی کاپٹر کے ٹکڑے تو ہوئے ہی تھے, ساتھ میں عمران اور اس کے ساتھیوں کی ہڈیوں کے ٹکڑے ہونا بھی یقینی تھا, قطعی یقینی. ہیلی کاپٹر کو تباہ ہوتے دیکھ کر کرسٹائن کی آنکھوں میں بھی بے پناہ چمک آ گئی تھی جسے عمران اور اس کے ساتھیوں کو इस तरह हलाक होते हुए देखकर इसे भी बेपनाह खुशी हो रही हो। इमरान हेलीकॉप्टर लेकर कुछ ही दूर गया होगा कि अचानक हेलीकॉप्टर की राडार स्क्रीन पर अलर्ट का क्षण आने लगा। साथ ही स्क्रीन पर क्रॉस का निशान बना और इसमें एक मिसाइल स्पार्क करता हुआ दिखाई देना शुरू हो गया। इससे पहले कि इमरान कुछ करता, अचानक एक मिसाइल शाइन की आवाज के साथ इसके दाएं तरफ से गुजरता चला गया। इमरान ने हाथ बढ़ाकर कंट्रोल पैनल के जल्दी जल्दी दो बटन प्रेस किए तो इसका मिसाइल सिस्टम भी रेडी हो गया और साथ ही राडार स्क्रीन पर इसे अपने आकब में चार हेलीकॉप्टर अपने पीछे आते हुए दिखाई दिए। लगता है ये हेलीकॉप्टर कर्नल हेमंत ने 20 कैंप से हमारे पीछे भेजे हैं, जूलिया ने कहा जो इसके साथ वाली सीट पर बैठी हुई थी। हाँ, ये कर्नल हेमर के ही भेजे हुए हेलीकॉप्टर हैं। इमरान ने इस बात में सर हिलाकर कहा। राडार स्क्रीन पर हेम की आवाज सुनाई दी और साथ ही स्क्रीन पर एक साथ तीन और मिसाइल शो होने लगे, जिसका मतलब था कि अकब से इनके हेलीकॉप्टर पर मजीद तीन मिसाइल फायर कर दिए गए हैं। इमरान की नजरें राडार स्क्रीन पर ही जमी हुई थी। मिसाइल तेजी से हेलीकॉप्टर के नजदीक आते जा रहे थे और फिर जब इन मिसाइलों का फासला 20-25 फीट रह गया तो इमरान ने अचानक कंट्रोलिंग रॉड को पूरी कुवत से अपनी तरफ खींच लिया। इसी लम्हे इसके हेलीकॉप्टर का फ्रंट ऊपर की तरफ हुआ और हेलीकॉप्टर किसी रॉकेट की तरफ तेजी से ऊपर उठता चला गया। इसी लम्हे पीछे से आने वाले मिसाइल इसके हेलीकॉप्टर के एन नीचे से गुजरते चले गए। बुलंदी पर लाते ही इमरान ने हेलीकॉप्टर सीधा किया और फिर इसने हेलीकॉप्टर को कदरे दाएं रुख पर रखकर उड़ाना शुरू कर दिया। इसके पीछे आने वाले हेलीकॉप्टर भी अपाचे ही थे जो निहायत तेज रफ्तार से इसके पीछे आ रहे थे। अचानक इन हेलीकॉप्टरों में लगी मशीन गनों से गोलियां उगलना शुरू हो गई। ये देखकर इमरान ने लीवर को तेजी से दाएं बाएं करना शुरू कर दिया, जिससे इसका हेलीकॉप्टर दाएं बाएं लहराने लगा और अकब से मशीन गनों से निकलने वाली गोलियां इसके हेलीकॉप्टर के दाएं बाएं और ऊपर नीचे से निकलने लगी। सुर्ख रंग के शोलों की धारें थीं जो इसके हेलीकॉप्टर के दाएं बाएं से गुजरती जा रही थीं और इमरान नहायत माहिराना अंदाज में हेलीकॉप्टर लहराते हुए पीछे आते हुए हेलीकॉप्टरों की मुसलसल फायरिंग से खुद को बचा रहा था। फायरिंग के साथ साथ पीछे आने वाले हेलीकॉप्टर इस पर मिसाइल भी दाग रहे थे, लेकिन इमरान चूंकि हेलीकॉप्टर जैग अंदाज में उड़ रहा था इसलिए अभी तक इसके हेलीकॉप्टर को ना कोई मिसाइल लगा था और ना कोई गोली। तुम सब ने सेफ्टी ब्लेड्स लगा रखी है, इमरान ने पीछे बैठे हुए अपने साथियों से पूछा। हाँ, हम सब ने बेल्ट्स बांध रखी हैं, तनवीर ने जवाब देते हुए कहा। ओके, मैं हेलीकॉप्टर घुमाकर इनके पीछे लाने की कोशिश करता हूँ, वरना इसी तरह से हमारे पीछे लगे रहेंगे, इमरान ने कहा तो इन सब ने इस बात में सर हिला दिए। इमरान ने एक बार फिर लीवर को अपनी तरफ खींचा तो हेलीकॉप्टर का रुख एक बार फिर ऊपर की तरफ हो गया। हेलीकॉप्टर पहले तो किसी रॉकेट की तरह ऊपर उठता रहा, फेस ने उलटकर नीचे आना शुरू कर दिया। इमरान हेलीकॉप्टर ऊपर से पलटा कर नीचे की तरफ ला रहा था। दुश्मनों के चार हेलीकॉप्टर इसके हेलीकॉप्टर के नीचे से निकल गए थे और वो आगे जाकर दाएं बाएं मुड़ते हुए दिखाई दे रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो मुड़ते इमरान हेलीकॉप्टर नहत माहिराना अंदाज में उल्टा कर इनके अकब में ले आया था और दो हेलीकॉप्टर दाएं तरफ मुड़ गए थे, जबकि दो हेलीकॉप्टर अभी मुड़ने ही लगे थे कि इमरान ने इनमें से एक हेलीकॉप्टर को अपने टारगेट में लिया और मिसाइल फायर करने वाला रेड बटन अंगूठे से प्रेस कर दिया जो लीवर के ऊपर लगा हुआ था। हेलीकॉप्टर के निचले हिस्से में मौजूद लॉन्चर से एक मिसाइल निकला और बिजली की तेजी से टारगेट में आने वाले हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ता चला गया। इससे पहले कि हेलीकॉप्टर का पायलट मिसाइल से खुद को बचाने की कोशिश करता, मिसाइल ठीक हेलीकॉप्टर की टेल से टकराया। एक जोरदार धमाका हुआ और हेलीकॉप्टर शोले बरसाता हुआ टुकड़े टुकड़े होकर बिखरता चला गया। इमरान का हेलीकॉप्टर सीधा इसी हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ रहा था, जिसके तबाह होने से इस हेलीकॉप्टर के टुकड़े इमरान के हेलीकॉप्टर से टकरा सकते थे। इसलिए मिसाइल फायर करते ही इमरान ने हेलीकॉप्टर का रुख नीचे की तरफ कर दिया था। तबाह होने वाले हेलीकॉप्टर के टुकड़े इसके हेलीकॉप्टर के ऊपर से गुजर गए थे। इमरान ने फौरन हेलीकॉप्टर मोड़कर दूसरे हेलीकॉप्टर के पीछे लगा दिया। दूसरे दो हेलीकॉप्टर घूम कर इसके दाएं और बाएं आ गए थे। अब पोजीशन ये थी कि एक हेलीकॉप्टर इमरान के हेलीकॉप्टर के आगे था, जबकि दूसरा हेलीकॉप्टर दाएं तरफ था और तीसरा बाएं तरफ। इन हेलीकॉप्टरों के नीचे लगी हुई हैवी मशीन गनों की नाले घूम कर इमरान के हेलीकॉप्टर की तरफ मुड़ रही थी। दाएं बाएं मौजूद दोनों हेलीकॉप्टरों और इमरान के हेलीकॉप्टर की बराबरी एक जैसी थी। दोनों हेलीकॉप्टरों की खिड़कियों से इनके पायलट साफ दिखाई दे रहे थे, जो इमरान की जानिब नहत खूंखार नजरों से घूर रहे थे। इमरान पायलट्स को देखने के बजाय हेलीकॉप्टरों के नीचे लगी घूमती हुई मशीन गनों की नालों की तरफ देख रहा था, जिनसे निकलने वाली गोलियां दोनों इतराफ से इमरान के हेलीकॉप्टर पर पड़ सकती थीं और इमरान के लिए इनसे बचना मुश्किल हो सकता था। जूलिया और बाकी सब साथी भी होंठ बीछे दोनों हेलीकॉप्टरों की तरफ ही देख रहे थे। क्या कर रहे हो इमरान, खुद को इन हेलीकॉप्टरों के दरमियान से निकालो, दोनों हेलीकॉप्टरों से फायरिंग शुरू हो गई तो हम बच नहीं सकेंगे, जूलिया ने गुस्से लहजे में कहा। लेकिन इमरान ने इसकी बात का कोई जवाब ना दिया। वो इन दोनों हेलीकॉप्टरों की बराबरी पर ही अपना हेलीकॉप्टर उड़ा रहा था। फिर जैसे ही दोनों हेलीकॉप्टरों की मशीन गनों का रुख इसके हेलीकॉप्टर की तरफ हुआ, इमरान ने बिजली की सी तेजी से हेलीकॉप्टर नीचे की तरफ झुका दिया। इसका हेलीकॉप्टर जैसे ही नीचे गया, इसी लम्हे दोनों हेलीकॉप्टरों की मशीन गनों के मुंह खुल गए। दोनों ने एक साथ फायरिंग खोल दी थी। इमरान ने चूंकि अचानक अपना हेलीकॉप्टर नीचे की तरफ झुका दिया था, इसलिए वो दोनों हेलीकॉप्टरों से होने वाली फायरिंग से बच गया था और वो दोनों हेलीकॉप्टर भी चूंकि एक बराबर उड़ रहे थे, इसलिए दोनों हेलीकॉप्टरों से होने वाली फायरिंग एक दूसरे के हेलीकॉप्टरों पर पड़ने लगे। और फिर यह के बाद दीगर दो जोरदार धमाके हुए और दोनों हेलीकॉप्टर तबाह हो गए। इमरान ने रिस्क लेते हुए नहायत माहिराना अंदाज में हेलीकॉप्टर नीचे की तरफ झुका दिया था, वरना दोनों तरफ से होने वाली फायरिंग ने से इसका हेलीकॉप्टर किसी भी सूरत में नहीं बच सकता था। दोनों हेलीकॉप्टरों के पायलट इमरान की चलाकी को समझ नहीं सके थे कि इमरान हेलीकॉप्टर इनकी बराबरी पर क्यों उड़ा रहा है। इनके शायद वहम गुमान में भी नहीं था कि इमरान इस कदर तेजी और महारत से अपना हेलीकॉप्टर नीचे ले जाएगा और वो दोनों खुद एक दूसरे की फायरिंग की जिद में आ जाएंगे। वेल डन, ये हुई ना बात, बड़े आए थे हमें निशाना बनाने वाले, तनवीर ने पुरजोश लहजे में कहा और इसका पुरजोश अंदाज देखकर वो सब मुस्कुराए। पायलट सीट पर इमरान साहब बैठे हो तो दूसरे किसी गन शिप हेलीकॉप्टर वालों की क्या मजा कि हमें हट कर सकें। ये तो गन शिप हेलीकॉप्टर है, अगर इमरान साहब को चारों तरफ से फाइटर तैयारे भी घेर लें तो ये इनसे भी बच निकले और उल्टा इन्हें तबाह करने का गुर जानते हैं, चौहान ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान खामोशी से इनकी बातें सुन रहा था। अब इसके सामने एक हेलीकॉप्टर था जो नहायत तेजी से इसके आगे उड़ा जा रहा था। वो हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ तेजी से मोड़ काटने की कोशिश कर रहा था, जैसे इसकी कोशिश हो के वो एक लंबा चक्कर काट कर इमरान के हेलीकॉप्टर के पीछे आ जाए। लेकिन वो जिस तरफ मुड़ता था, इमरान भी अपना हेलीकॉप्टर इसी तरफ मोड़ लेता था। अगर वो हेलीकॉप्टर زگ زیگ انداز میں لہراتا تو عمران بھی اس کے پیچھے اپنا ہیلی کاپٹر لہرانا شروع کر دیتا تھا۔ اسی طرح ہیلی کاپٹر کبھی اوپر اٹھنے کی کوشش کرتا اور کبھی جھک کر نیچے جانا شروع ہو جاتا۔ وہ ہر وقت پر عمران سے اپنا پیچھا چھڑانا چاہتا تھا لیکن عمران اسے کوئی موقع نہیں دے رہا تھا۔ دونوں ہیلی کاپٹر تیزی سے ایک دوسرے کے پیچھے اڑتے ہوئے میدانوں، دریاؤں اور پہاڑیوں کے اوپر سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ ان کی بلندی کبھی بڑھ جاتی تھی اور کبھی دونوں ہیلی کاپٹر اتنا نیچے آ جاتے تھے کہ بعض اوقات ایسا لگتا تھا جیسے دونوں ہیلی کاپٹر نیچے پہاڑیوں کی چوٹیوں سے ٹکرا جائیں گے۔ اس ہیلی کاپٹر کا پائلٹ بھی خاصا مشاق معلوم ہو رہا تھا۔ وہ جس انداز میں ہیلی کاپٹر موڑ رہا تھا اور زگ زیگ انداز میں گھما رہا تھا، کوشش کے باوجود عمران ابھی تک اسے اپنا ٹارگیٹ میں نہیں لے سکا تھا۔ اس نے ایک دو بار دوسرے ہیلی کاپٹر پر گولیاں برسائی تھی لیکن پائلٹ نہایت مہارت سے خود کو ان گولیوں سے بچا گیا تھا، اس لیے عمران نے اس پر فائرنگ کرنا ترک کر دیا تھا۔ اس کا انگوٹھا میزائل فائر کرنے والے بٹن پر تھا۔ وہ اس ہیلی کاپٹر کو میزائل مار کر تباہ کرنا چاہتا تھا لیکن ہیلی کاپٹر کسی طرح اس کے ٹارگیٹ میں آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یہ کیا تم اس کے ساتھ بلی چوہے کا کھیل کھیل رہے ہو؟ ہٹ کرو اسے، اگر یہ اسی طرح ہم سے بچتا رہا تو اتنی دیر میں اسرائیل سے اور گن شپ، ہیلی کاپٹر اور فائٹر طیارے یہاں پہنچ جائیں گے، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں کوشش کر رہا ہوں لیکن یہ کسی طرح سے قابو نہیں آ رہا ہے، پائلٹ ضرورت سے زیادہ چلاک ہے، عمران نے کہا۔ کیا وہ تم سے بھی زیادہ چلاک ہے؟ جولیا نے منہ بنا کر کہا اور اس کا جواب سن کر عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ نہیں، وہ مجھ سے زیادہ چلاک نہیں ہے، اگر وہ مجھ سے زیادہ چلاک ہوتا تو تم میرے ساتھ نہیں بلکہ اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوتی، عمران نے کہا۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ جولیا نے حیران ہو کر کہا، جیسے وہ عمران کی بات نہ سمجھی ہو، بس جو منہ میں آیا کہہ دیا، اب میں ہر بات کا تمہیں کیا مطلب بتایا کروں، عمران نے اسی انداز میں کہا اور جولیا اسے گھور کر رہ گئی۔ سامنے ہیلی کاپٹر اسی طرح عمران سے بچتا ہوا کافی نیچے آ گیا تھا۔ نیچے پہاڑیوں کا طویل سلسلہ پھیلا ہوا تھا، ہیلی کاپٹر ان پہاڑیوں کے دائیں بائیں مڑ رہا تھا جیسے پائلٹ کسی پہاڑی کا موڑ مڑ کر عمران کو داج دے کر اس کے پیچھے آنا چاہتا ہو، لیکن عمران اسے ایسا کرنے کا کوئی موقع نہیں دے رہا تھا۔ ایسے بات نہیں بنے گی، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ہیلی کاپٹر ایک بڑی پہاڑی کے دائیں طرف مڑ گیا تو عمران نے اس کے پیچھے جانے کے بجائے اپنا ہیلی کاپٹر بائیں طرف موڑ دیا اور ایک پہاڑی کے گرد گھومتا ہوا دوسری طرف آ گیا۔ جیسے ہی اس نے موڑ کاٹا، اسے دوسری پہاڑی کے پیچھے سے مخالف ہیلی کاپٹر نکل کر اس طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ ہیلی کاپٹر کو دیکھ کر عمران کے ہونٹوں پر یکلک زہریلی مسکراہٹ آ گئی۔ پائلٹ نے اس ہیلی کاپٹر کو دیکھا تو اس نے ہیلی کاپٹر تیزی سے اوپر اٹھانا چاہا لیکن اب عمران بھلا اسے کب موقع دینے والا تھا۔ اس نے لیور پر لگے ہوئے سرخ بٹن کو پریس کیا تو لانچر سے ایک میزائل نکل کر اوپر اٹھتے ہوئے ہیلی کاپٹر سے جا ٹکرایا اور اس ہیلی کاپٹر کے پرچے اڑتے چلے گئے۔ وہ مارا یہ ہوئی نا بات، جولیا نے جوش بھرے لہجے میں کہا۔ چوتھے ہیلی کاپٹر کو ہٹ ہوتے دیکھ کر ممبران کے چہروں پر بھی سکون آ گیا تھا کیونکہ یہ ہیلی کاپٹر کسی طرح عمران کے قابو میں ہی نہیں آ رہا تھا، لیکن عمران بھلا اسے آسانی سے کہاں چھوڑنے والا تھا۔ اس نے آخرکار چوتھے ہیلی کاپٹر کے پائلٹ کو ڈاج دے کر اس کا ہیلی کاپٹر ہٹ کر دیا تھا جو بڑی چلاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی طرف سے ایک بڑی پہاڑی کا چکر کاٹ کر عمران کے ہیلی کاپٹر کے پیچھے آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عمران نے ہیلی کاپٹر کا ٹرانسمیٹر آف کر رکھا تھا वो सब चूंकि लाइट फ्लैश का शिकार बने हुए थे और इन्हें बाकायदा मॉनिटर किया जा रहा था, इसलिए इमरान ने गार से निकलते ही ब्लैक हार्ट एजेंसी के एस ग्रुप पर डायरेक्ट एक्शन कर दिया था, क्योंकि वो जहां भी जाते इन्हें हर जगह आसानी से देखा जा सकता था। अब क्या प्रोग्राम है, जूलिया ने इमरान से मुखातिब होकर पूछा। इमरान ने हेलीकॉप्टर ऊपर उठा लिया था और इसे बुलंदी पर लाकर एक बार फिर इसराइल की जानिब परवास करना शुरू कर दिया था। पहले तुम सब अपनी आंखों पर सियाह पट्टियां बांध दो, इमरान ने कहा। सियाह पट्टियां क्यों, सफदर ने हैरान होकर कहा। लाइट फ्लैश से हम इसी सूरत में बच सकते हैं जब हमारी आंखों पर सियाह पट्टियां बंधी हुई होंगी। सियाह पट्टियों से सबकी आंखों में मौजूद ब्लू स्पॉट छुप जाएंगे, फिर ब्लैक हार्ट एजेंसी वाले हमें डायरेक्ट मॉनिटर नहीं कर सकेंगे, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। और तुम अगर तुमने भी सियाह पट्टी बांध ली तो हेलीकॉप्टर कैसे उड़ाओगे, जूलिया ने पूछा। मेरी फिक्र ना करो, मेरे पास आई लेंस वॉश करने वाला लोशन मौजूद है, मैं इसे आंखों में डालकर इससे ब्लू स्पॉट्स वॉश कर लूंगा, इमरान ने कहा। तो फिर हमें सियाह पट्टियां बांधने की क्या जरूरत है, हम भी इसी लोशन से अपनी आंखें साफ कर लेते हैं, तनवीर ने कहा। नहीं, मेरे पास लोशन की मिकदार कम है, इससे सिर्फ एक शख्स ही आंखें साफ कर सकता है, इमरान ने कहा। लेकिन हम कब तक सियाह पट्टियां बांधे रहेंगे, जूलिया ने मुंह बनाकर कहा। जब तक हम इसी हेलीकॉप्टर में मौजूद हैं, इमरान ने जवाब दिया। और ये हेलीकॉप्टर हमें कहाँ ले जा रहा है, जूलिया ने पूछा। आसमान की बुलंदियों पर, इमरान ने मुस्कुराकर कहा। मेरा मतलब है कि अब तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो, जूलिया ने भी सर झटक कर पूछा। बताया तो है आसमान की बुलंदियों पर, इमरान ने इसी अंदाज में कहा। बुलंदियों पर तो हम हैं, इसके बाद हमने कहाँ जाना है, जूलिया ने पूछा। जहाँ ये हेलीकॉप्टर ले जाएगा हम चले जाएंगे, इमरान ने जवाब दिया। इमरान साहब, हम दुश्मनों के हेलीकॉप्टर में मौजूद हैं, हमें जहाँ जाना है जल्द से जल्द वहाँ पहुँच जाना है, ऐसा ना हो कि ब्लैक हार्ट एजेंसी या इसराइली फोर्सेस हमारे पीछे लग जाएं, सफदर ने कहा। हाँ वाकई, इस हेलीकॉप्टर में हमने काफी सफर कर लिया है, अब हमें इस हेलीकॉप्टर को यहीं कहीं छोड़ देना चाहिए, जूलिया ने सफदर की तायद करते हुए कहा। इस वक्त हम सहरा पर परवास कर रहे हैं, अगर कहो तो हम यहीं उतर जाएं, इमरान ने पूछा। सहरा बेहद तवील मालूम हो रहा है, सहरा से निकलकर किसी आबाद इलाके में चलें ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बना सकें। अगर इस सहरा में रहे तो फिर मंजिल तो क्या, हम यहाँ से निकलने का कोई रास्ता भी तलाश नहीं कर सकेंगे, सिद्दीकी ने कहा। इस सहरा के बारे में तुम जानते हो, इमरान ने पूछा। जी हाँ, ये अंगाना का सहरा है जिसे उर्फ आम में हार्ड डेजर्ट कहा जाता है। तवील और अरीज होने के साथ साथ ये सहरा बेहद दुश्वार गुजार और खतरनाक है, यहाँ आए दिन खौफनाक तूफान उठते रहते हैं जो बड़ी बड़ी चट्टानों को भी जमीन से उखाड़ कर अपने साथ ले जाते हैं। एक बार तूफान शुरू हो जाए तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लेते, सिद्दीकी ने जवाब दिया। और जिस तरफ हम जा रहे हैं वहाँ तकरीबन 800 किलोमीटर दूर तल अबीब है, अगर हम इसी रफ्तार से चलते रहें तो 3 से 4 घंटों में वहाँ पहुँच सकते हैं, नोमानी ने कहा। और अगर इतनी दूर तक जाने के लिए हेलीकॉप्टर में फेवल ना हुआ तो, इमरान ने पूछा। ओ फिर तो मुश्किल हो जाएगी, सिद्दीकी ने कहा। कैसी मुश्किल, खावर ने पूछा। हमें पैदल इस सहरा में चलना पड़ेगा, इस सहरा में रात के वक्त तो सुकून होता है लेकिन दिन के वक्त दर्जे हरारत इस हद तक बढ़ जाता है कि जिस्म झुलसने लगता है और पानी ना मिले तो डिहाइड्रेशन होने का खतरा हो सकता है जिससे सर के साथ सारा जिस्म दर्द करना शुरू कर देता है, जी मतलाता है और बुखार के साथ साथ और भी बहुत सी पेचीदगियां हो सकती हैं, इस बार नोमानी ने जवाब देते हुए कहा। हाँ वाकई हमारे पास ना खाने के लिए कुछ है और ना पीने के लिए पानी, चौहान ने कहा। अगर हम इस सहरा में उतर कर सफर करें तो कब तक तिल अभी पहुंच सकते हैं? सफदर ने पूछा। तवील मसाफत है, अगर मौसम साफ रहे और हम रुके बगैर चलते रहें, तब भी हमें तिल अभी पहुंचते पहुंचते कई हफ्ते लग जाएंगे, इमरान ने जवाब दिया। हेलीकॉप्टर में कितना फ्यूल बाकी है और हम इस फ्यूल से कहाँ तक जा सकते हैं? जूलिया ने पूछा। ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे तक हम मजीद सफर कर सकते हैं, इमरान ने जवाब दिया और इन सबके चेहरों पर तश्वीश लहराने लगी। फिर तो हम सहरा के वस्त तक ही पहुंच सकेंगे, सिद्दीकी ने परेशान लहजे में कहा। हाँ, इमरान ने अजबात में सर हिलाकर जवाब दिया। फिर इसने हेलीकॉप्टर नीचे लाना शुरू कर दिया। ये क्या, तुम हेलीकॉप्टर नीचे क्यों ले जा रहे हो? अभी तो तुमने कहा था कि हम आधे घंटे तक मजीद सफर कर सकते हैं। जूलिया ने इसे हेलीकॉप्टर नीचे ले जाते देखकर चौंकते हुए कहा। जब हमने सहरा में ही सफर करना है तो आधा घंटा ज्यादा क्या और कम क्या, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं समझी नहीं, जूलिया ने हैरान होकर कहा। हेलीकॉप्टर में बहुत कम फ्यूल बाकी है, मैं चाहता हूँ कि हम जहाँ उतरे हेलीकॉप्टर वहाँ से बहुत दूर जाकर गिरे, ताकि इसराइली फोर्सेस या ब्लैक हार्ट एजेंसी आसानी से हमें तलाश न कर सके। हमें हेलीकॉप्टर जहाँ गिरेगा वो लोग वहीं जाकर हमें तलाश करेंगे और हम इत्मीनान से अपना सफर करते रहेंगे, इमरान ने कहा। इत्मीनान से तो ना कहें, हर डिजर्ट का सफर हमारे लिए मौत का सफर भी बन सकता है, यहाँ हमारे लिए कुछ भी नहीं होगा, न खाना न पानी, सिद्दीकी ने हंसकर कहा। चलो ज्यादा भूख लगी तो रेत ही थाक लेंगे, इमरान ने कहा। रेत थाकने से क्या होगा, क्या इससे हमारी भूख प्यास खत्म हो जाएगी, जूलिया ने मुंह बनाकर कहा। बातों के दरमियान इन्होंने अपने सियाह रंग के बैगों के अंदरूनी हिस्सों से पट्टियां सी फाड़ ली थी जो इन सब ने आंखों पर बांध ली थी, जबकि इमरान ने अंदरूनी जेब से एक आईलेंस क्लीनर निकालकर इसके ड्रॉप्स अपनी आंखों में डाल लिए थे। इन ड्रॉप्स ने वाकई हैर अंगेज कारकर्दगी दिखाई थी और इसकी आंखों के किनारों पर मौजूद ब्लू स्पॉट्स खत्म हो गए थे। थोड़ी ही देर में इमरान ने हेलीकॉप्टर नीचे उतार लिया। जैसे ही हेलीकॉप्टर नीचे उतरा, इमरान ने इन सबको नीचे उतरने का कहा तो वो सब अपना सामान लेकर हेलीकॉप्टर से बाहर आ गए। इमरान के कहने पर उन्होंने बदसुतूर आंखों पर सियाह पट्टियां बांध रखी थी। इन सबके उतरने के बाद इमरान ने हेलीकॉप्टर को ऑटो पायलट कंट्रोल कर दिया और फिर जैसे ही हेलीकॉप्टर बुलंद होना शुरू हुआ, वो अपनी साइड का दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। हेलीकॉप्टर ऑटो पायलट होकर काफी बुलंदी पर गया और फिर इसका रुख मशरिक की तरफ हो गया और वो तेजी से मशरिक की तरफ बढ़ता चला गया। शाम हो रही थी, आसमान बिल्कुल साफ था। दूर तक चूंकि रेत का समंदर ही समंदर फैला हुआ था, इसलिए इमरान को हेलीकॉप्टर दूर तक जाता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। फिर हेलीकॉप्टर इसकी निगाहों से ओझल हो गया। रेत काफी गर्म थी, इस रेत में इनके पैर बुरी तरह से झुलस रहे थे, लेकिन करते क्या न करते के मुसद्दक अब इन्हें सहरा के मसाइब बर्दाश्त करने ही थे। इमरान के कहने पर इन्हें रात होने तक आंखों से सियाह पट्टियां नहीं हटानी थी। इमरान ने इन्हें बताया था कि रात के वक्त लाइट फ्लैश सैटेलाइट से इन्हें चेक नहीं किया जा सकता, इसलिए वो रात को पट्टियां उतार सकते हैं। अब अगर इन्होंने पट्टियां उतारी तो इन्हें मॉनिटर करने वालों को फौरन मालूम हो जाएगा कि वो कहाँ हैं और फिर ब्लैक हार्ट एजेंसी को यहाँ फोर्स भेजने में देर नहीं लगेगी। इमरान ने अपने बैग से रस्सी का एक बंडल निकाल लिया था। फिर इसने इन सबको लाइन में खड़ा किया और रस्सी खोलकर इनके हाथों में पकड़ा दी। रस्सी का अगला सिरा इमरान के हाथ में था जबकि पिछला सिरा चौहान के हाथ में था। अब इमरान आगे बढ़ता तो वो इस रस्सी के सहारे बगैर देखे इमरान के साथ चल सकते थे। ये नॉवेल डेविल माइंड का बाकी हिस्सा पार्ट 14 में समाप्त फरमाएं।